blessed Savior. Om Namah Siddhaya. Om Namah Siddhaya. Om Shuddhatmane Namah. Namo Arihantanam. Namo Siddhanam. Namo Ayariyanam. Namo Chayanam Namo Loe Savasahunam Nittaviyattakamam Viram Namiyunapatta Savattam Anubhagasa Vihattim Jahovai Samparuvemo. यह श्री वीरसेन आचार्य रचित जयधोला टीका है जो कषाय पावर तथा चुन्नी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुणधर भट्टारक तथा यतीर्ष आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। पांचवी पुस्तक में अभी हम पृष्ठ संख्या 29 पर आ गए हैं, 29। यहाँ विशेषार्थ से पढ़ेंगे तो आपको ख्याल आएगा विषय कैसा चल रहा है। अनुभाग विभक्ति में एक जीव की अपेक्षा काल चल रहा है। अनुभाग विभक्ति का अर्थ होता है अलग अलग जो अनुभाग पाए जाते हैं। मोहनीय कर्म की यहाँ मूल प्रकृति की बात चल रही है, उसमें उत्तर भेद मिथ्यात्व है कि सम्यक मिथ्यात्व है कि सम्यक पर, उसकी बात यहाँ नहीं हो रही। तो विभक्ति का अर्थ होता है भेद, अलग अलग जो स्थान, किसी के बहुत तीव्र अनुभाग है, किसी के कम है। कर्मों के अनुभाग की बात चली ना, अनुभाग का अर्थ क्या देखा था, फल देने की शक्ति। हाँ, तो यहाँ जो देख रहे हैं हम कि एक जीव को उत्कृष्ट यानी अनुभाग में भी हम दो प्रकार से उसको कहते हैं, उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट। जो मैक्सिमम पॉसिबल है उसको उत्कृष्ट कहते हैं, उसके बिना जो है वो अनुत्कृष्ट है। उत्कृष्ट कब होता है, जब जीव उत्कृष्ट अनुभाग का बंद करता है तब उसको उत्कृष्ट होता है। वो लगातार कितना हो सकता है एक जीव को, तो कहते अंतर्मूर्त, क्योंकि अंतर्मूर्त के बाद नियम से वो अनुत्कृष्ट होता है, मैक्सिमम नहीं रहता, कम हो जाता है। अब अनुत्कृष्ट कहाँ तक कहेंगे, तो जो उत्कृष्ट नहीं है वो सब अनुत्कृष्ट है, यानी सारे जघन्य तक के सभी भेद अनुत्कृष्ट में आ जाएंगे। उत्कृष्ट का बंधक कौन करता है, संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त मिथ्या दृष्टि। ऐसा जीव उत्कृष्ट बंद करके यदि एकेंद्रिय में जाता है, अपर्याप्तों में जाता है, कहीं भी जाता है, फिर भी वो उसके अंतर्मूर्त में गया है ना, तो उस जीव के वहां जाने पर भी उत्कृष्ट अनुभाग पाया जाएगा। एकेंद्रिय जीव उत्कृष्ट अनुभाग का बंध नहीं करते, परंतु जो पंचेंद्रियों में से उत्कृष्ट अनुभाग बांधकर आए हैं, उनका वहां उत्कृष्ट अनुभाग पाया जाएगा। ये बात यहां हमने पहले देख ली है। तो कौन से जीव उसके स्वामी होते हैं वगैरह उसकी बात हो गई है। यहां काल का अर्थ होता है लगातार उत्कृष्ट 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 रहने का काल, एक जीव की अपेक्षा लगातार जघन्य 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 रहने का काल, ये हमने यहां देखना चालू किया था। उसमें हमने पहले में पहले ओघ में इन जनरल बात की थी काल की, उसको देखकर आगे बढ़ेंगे हम। और बाद में मार्गणाओं में हमने देखे थे, केवल हम यहाँ ओघ की अपेक्षा बात करेंगे जो पृष्ठ संख्या 20 पर है। तो 20 नंबर के पृष्ठ पर वहाँ काल यहाँ बताया था, तो 29 नंबर का जो पॉइंट है उसमें दूसरी अक्ष दूसरी लाइन वहां लिखते हैं ओघ की अपेक्षा, यानी सभी जीवों की बात करेंगे। मोहनीय कर्म की उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का कितना काल है, लगातार कोई एक जीव उत्कृष्ट अनुभाग सहित रहे तो कितने काल तक रह सकता है, तो कहते हैं जघन्य भी अंतर्मूर्त। ऐसा नहीं कि एक समय के लिए उत्कृष्ट किया और फिर अनुत्कृष्ट हुआ, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि बंधता है तो वो उत्कृष्ट रहता है तो वो अंतर्मूर्त, और अधिक से अधिक काल रहे तो भी अंतर्मूर्त, अंतर्मूर्त तक। हाँ, बांधता रहेगा और एक समय तक भी बांध सकता है, फिर भी एक समय जो बांधा है उसका उत्कृष्ट जो अनुभाग है वो अंतर्मुहूर्त तक रहेगा। सत्ता की बात है यह उदय की बात ही नहीं है, क्योंकि निषेक में हम क्या देख रहे थे, एक बार उसने बांध लिए 70 कोड़ा कोड़ी के, प्रति समय एक एक समय तो गल ही जाएगा उसका, वो तो उत्कृष्ट स्थिति नहीं रही एक समय की बंधे हुए, परंतु नया नया बंद होता रहेगा। तो निषेकों में तो वहां भी अंतर्मूर्त बना रहेगा, परंतु क्या नया नया बंध की अपेक्षा, यहाँ एक ही समय में बंधा हुआ जो अनुभाग है वो अंतर्मूर्त तक तो उतना ही रहेगा। हाँ, उत्कृष्ट है मैक्सिमम, उत्कृष्ट है अच्छा नहीं। हाँ बरोबर, जिसको मैं ये इसका काम बहुत उत्कृष्ट है, ये वो बात यहाँ नहीं, उत्कृष्ट है मैक्सिमम और जघन्य है मिनिमम। उत्कृष्ट का अर्थ अच्छा होता है, वो यहाँ नहीं बात, अच्छा है पूछ लेना इसी कोई बात। हाँ, ये उत्कृष्ट अनुभव को हम मोहनीय के तो अच्छा नहीं कहेंगे। हाँ तो उसका लगातार रहने का काल बात हो रही उसकी, तो लगातार कोई जीव के उत्कृष्ट उत्कृष्ट रहे जघन्य से भी यानी मिनिमम पॉसिबल कितने काल तक उत्कृष्ट रह सकता है, तो अंतर्मूर्त। अधिक से अधिक रहे क्या सतत पूरे लाइफ टाइम तक रहेगा, नहीं अंतर्मूर्त तक ही, फिर नियम से अनुत्कृष्ट हो जाएगा, फिर दोबारा उत्कृष्ट हो सकता है। तो यहाँ हमने ये 20 पृष्ठ पर देखा है उत्कृष्ट और जघन्य काल अंतर्मूर्त, जो उत्कृष्ट नहीं है अनुत्कृष्ट, तो अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का काल कितना हो सकता है, तो उसका भी जघन्य काल अंतर्मूर्त। ऐसा नहीं कि एक समय के लिए अनुत्कृष्ट हुआ और दोबारा उत्कृष्ट हुआ, उत्कृष्ट में से अनुत्कृष्ट हुआ तो अंतर्मूर्त तो अनुत्कृष्ट रहेगा। और उत्कृष्ट काल कितना होता है, लगातार अनुत्कृष्ट ही रहे, बीच में उत्कृष्ट होए ही नहीं, तो उसको ऐसा लेना है। उत्कृष्ट का बंध कौन करता है, तो संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त मिथ्या दृष्टि, ऐसा जीव उत्कृष्ट अनुभाग का बंध किया, अंतर्मूर्त में अनुत्कृष्ट हो गया, अब अनुत्कृष्ट के साथ रहा कुछ काल तक, एकेंद्रिय में चला गया। एकेंद्रिय में कितने काल तक अधिक से अधिक रह सकता है, एकेंद्रियों में असंख्यात पुद्गल परावर्तन, फिर जाके पंचेंद्रियों में उत्पन्न हुआ और जब वो उत्कृष्ट बांधेगा तब उत्कृष्ट हो जाएगा। तो अनुत्कृष्ट का इतना लंबा काल है, एकेंद्रिय में भी गया तो भी वो उत्कृष्ट तो नहीं होता, वहां बंध नहीं किया है उसने और उसकी सत्ता के साथ नहीं आया है, तो ऐसा उसको काल घटित करना, ये हमने इन जनरल बात देखी थी। जहां जहां ये एकेंद्रियों की एकेंद्रिय जिसमें इंक्लूडेड है, ऐसी जो मार्गणाएं हैं जैसे तिर्यंच, तिर्यंच में भी ये असंख्यात पुद्गल परिवर्तन घटित होगा, मनुष्यों में तो नहीं होगा, गति मार्गणा में मनुष्यों में तो नहीं होगा, तिर्यंचों में होता है क्योंकि एकेंद्रिय सारे तिर्यंच ही है, उनमें तो ये बात घटित होगी। अज्ञानियों में यानी मति अज्ञानी श्रुता अज्ञानी में होगी, एकेंद्रिय यानी इंद्रिय मार्गणा में एकेंद्रियों में घटित होगा, काय मार्गणा में इस पांच स्थावर काय उसमें घटित होगा, यानी अकेले एक एक काय में नहीं, पांचों में, क्योंकि एकेंद्रिय सबको लेना है। तो इस तरह यहाँ उसके अन्य भी मार्गणाएं बतलाई है, जैसे नपुसक वेदी में होगा और चक्षु दर्शनियों में होगा, असंयतों में होगा, वो सब में। हाँ, अभी हम वही बात उन्होंने हर एक मार्गणा में बतलाई कि नारकियों में जब हम मार्गणाओं में देखते तो उस जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट समझना, नारकियों में उत्कृष्ट कौन, तो नारकी स्वयं उत्कृष्ट का बंध करेगा तब उसका उत्कृष्ट होगा, तो वो भी जघन्य और उत्कृष्ट अंतर्मूर्त ही रहेगा। और अनुत्कृष्ट कितना हो सकता है, ऐसा कोई नारकी होगा अनुत्कृष्ट के साथ ही नरक में उत्पन्न हुआ है और लगातार कितने समय तक चलेगा उसका अनुत्कृष्ट, 33 सागर, परंतु उसमें जघन्य घटित करना, अभी ऐसा जीव लेना, मनुष्य या तिर्यंच संगी पंचेंद्रिय मिथ्या दृष्टि है, अब उसने उत्कृष्ट का बंध किया, अंतर्मूर्त तक रहता है ना, तो अंतर्मूर्त बीतते बीतते एक समय अंतर्मूर्त का बाकी है, और वो एक समय में वो नरक में उत्पन्न हुआ, तो एक समय के लिए उत्कृष्ट रहा, बाद में अनुत्कृष्ट हुआ, तो वहां जघन्य एक समय घटित होता है। ख्याल में आती है ये बात? क्यों? मार्गणा में क्या है, मार्गणा बदल जाती है। उस मार्गणा में उत्पन्न हुआ, नरक में उत्पन्न हुआ, उत्कृष्ट के साथ आया है, एक समय तक उत्कृष्ट रहा, दूसरे समय में अनुत्कृष्ट हुआ। उल्टा भी ले सकते हैं कि मरण के समय तक तो उसको पहले उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट रहा था, और वहां पर उसने उत्कृष्ट का बंध किया, उसका उत्कृष्ट हुआ, तो एक समय के लिए उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट का भी एक समय घटित होगा। मरण के थोड़ा पूर्व उसने उत्कृष्ट बांधा, अंतर्मूर्त तक उत्कृष्ट रहा, और मरण के समय वो अनुत्कृष्ट हुआ, तो एक समय के लिए अनुत्कृष्ट। तो मार्गणाओं में ये उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट का एक समय घटित होता है, परंतु ओघ में तो हमने जघन्य भी अंतर्मूर्त देखा था, ये डिफरेंस है उसमें। तो यहां हमने अलग अलग मार्गणाओं में देखते देखते अभी हम पृष्ठ संख्या 29 पर आ गए हैं। उसमें हमने सम्यक्त्व मार्गणा में देख लिया था 40 नंबर के पॉइंट पर, अभी विशेषार्थ हम पढ़ेंगे। सम्यक्त्व की अपेक्षा यहां अलग अलग सम्यक दृष्टियों में उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट की बात की थी। आप कहेंगे सम्यक दृष्टियों में उत्कृष्ट अनुभाग कैसे होगा? तो अभी जो कोई सम्यक दृष्टि है उसके योग्य जो उत्कृष्ट अनुभाग है उसको मार्गणा में जब उत्कृष्ट कहते हैं तो उस मार्गणा की अपेक्षा उत्कृष्ट समझना, क्योंकि मिथ्या दृष्टि में जो उत्कृष्ट होगा और क्षायिक सम्यक दृष्टि में उत्कृष्ट होगा वो तो डिफरेंट होगा ही, क्योंकि अनुत्कृष्ट कब हो जाता है? तो उसका अनुभाग घटने पर, और अनुभाग के कांडक कहाँ होते हैं अधिक मात्रा में? तो एक तो सम्यक्त्व प्राप्त होता है प्रथमोपशम तब भी होते हैं, अनंतानुबंधी की विसंयोजना के टाइम भी होते हैं, और दर्शनमुखी क्षपना के समय भी होते हैं। इस तरह से उस मार्गणा में जो उत्कृष्ट है उसको उत्कृष्ट कहेंगे। अब विशेषार्थ पढ़ेंगे तो थोड़ा ख्याल आएगा। देखो जो तत्प्रायोग्य, तत्प्रायोग्य शब्द डाला क्योंकि उस मार्गणा के योग्य, जो तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट अनुभाग के साथ क्षायिक सम्यक्त को प्राप्त होता है। ये क्षायिक सम्यक दृष्टियों में उत्कृष्ट अनुभाग किसके होता है जरा स्वामित्व देख लेते हैं। जघन्य किसके होता है याद है? क्षायिक सम्यक दृष्टियों में जघन्य क्षपना करने वाले अंत समय में सूक्ष्म सांप्रायिक के। अब यहाँ हमें उत्कृष्ट देखना है, मैं पेज नंबर बताती हूँ आपको। स्वामित्व का जो अधिकार है उसके पहले अनुभाग का स्वामित्व, देखो क्षायिक सम्य दृष्टि निकालना है ना हमको 20-21 पेज के। ये जघन्य की बात है, उसके पहले पेज 15 उत्कृष्ट स्वामित्व समाप्त होता है 15 पर, और उसमें आप कौन सी नंबर कह रही? हाँ 14 पे, बराबर ज्ञान की अपेक्षा वाला है ना, 14 नंबर पेज है और नीचे की लाइन। पेज 14 से लेते हैं, देखो क्षायिक सम्यक दृष्टियों में मिला ना अंतिम लाइन 14 पेज, लास्ट एकदम लास्ट के दो शब्द, हाँ स्वामित्व ही है वहां पर। क्षायिक सम्यक दृष्टियों में मोहनीय कर्म का उत्कृष्ट अनुभाग किसके होता है? ये जिसके हुआ है किसके करना? दर्शन मुंगी क्षपणा और अनंतानुबंधी चतुष्क की विसंयोजना करते समय, ये करने के बाद वो क्षायिक हुआ है, परंतु जो क्षायिक होने के काल पहले जिसने ये कर रहा था उस समय जिस क्षायिक समय दृष्टि जीव ने सबसे जघन्य अनुभाग का घात किया है। अनुभाग कांडक भी अलग अलग होते हैं, और पूर्व का अनुभाग भी अलग अलग पाया जाएगा, क्योंकि उपशम सम्यक्त के बाद अनंतानुबंधी की विसर्जना होती है। तो उपशम सम्यक्त प्राप्त किया तो उसके पहले कितना अनुभाग था, अलग अलग जीवों के अलग अलग अनुभाग होगा। तो जिसने मिनिमम अनुभाग का घात किया है ऐसा जीव लिया है। तथा चारित्र मुनि का उपशम नहीं किया है, जो क्षायिक समय दृष्टि है उसके होने के पहले जो उपशम श्रेणी चढ़कर उतरता है और बाद में क्षायिक करेगा, उसका तो अनुभाग जघन्य होगा पहले से ही। या क्षायिक होने के बाद भी जो उपशम श्रेणी चढ़कर उतरेगा उसका क्या होगा, अनुभाग कांडक घात होते हैं। उपशम श्रेणी चढ़ते समय अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण गुण स्थानों में अनुभाग के कांडक घात होते। यहाँ स्थिति के तो होते ही है, अभी हम अनुभाग का प्रकरण देख रहे हैं। तो अनुभाग कांडक घात होते हैं, तो जो सत्ता में अनुभाग है वह घट जाता है। हमें उत्कृष्ट अनुभाग वाला कौन है उसको देखना था, इसलिए जिसने कम से कम अनुभाग का घात किया है ऐसा जीव लेना, और जो अभी उपशम श्रेणी नहीं चढ़ा है ऐसा लेना। ख्याल में आती है बात? हाँ, अभी हम आते हैं मूल पेज पर, 29 पेज पर।
उपशम श्रेणी में हमने दर्शन मौनी की अपेक्षा कांडक देखे थे, चारित्र मौनी में कांडक नहीं पर अनुभाग कांडक का होता ही है।
यहाँ दर्शन या चारित्र मौनी की अलग अलग बात नहीं, नहीं है।
क्षायिक समय दृष्टि को तो दर्शन मौनी तो सत्ता में है ही नहीं।
क्षायिक होने के पहले की बात करो, ख्याल में आता है ना। यहाँ जो क्षायिक समय दृष्टियों में उत्कृष्ट अनुभाग देख रहे है तो उसके तो ना
दर्शन मोहनी है,
दर्शन मोहनी है, पर मोहनी है कि नहीं है,
मोहनी है
उसकी बात चल रही है।
नहीं, जब उपशम श्रेणी में
उपशम श्रेणी में
कांडक देखे थे
हमने। नहीं, उपशम श्रेणी में दोनों के कांडक हो गए। उपशम श्रेणी में तो सभी कांडक घात होते, अशुभ प्रकृतियां जितनी है ज्ञानावरण के भी कांडक घात हो गए। जितने मोहनी कर्म सत्ता में है वो सबके कांडक घात हो गए। बाद में तो उसकी क्षपना करी तभी हमें उसको क्षायिक कहेंगे। तो उपशम श्रेणी में उसके कांडक घात हो गए। कौन से कर्मों के क्या क्या होते हैं वो बात तो हम उत्तर प्रकृति के प्रकरण में देखेंगे। अभी हमें मोहनी इन जनरल इतनी बात करनी है। क्षायिक हुआ है तो उसके दर्शन मोहनीय तो है ही नहीं है, परंतु जब वो उपशम श्रेणी चढ़ता था तब उसके सभी में अनुभाग कांडक घात हुए। चारित्र मोहनीय में भी, वो पहले चढ़ा या बाद में चढ़ा उससे कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि पहले भी चढ़ा होगा तो दर्शन मोहनी में उसने कांडघात किया, बाद में तो उसकी क्षपना हो ही चुकी है।
तो या तो जीव ऐसा ही लेना पड़ेगा जो जिसने उपशम सम्यक को प्राप्त किया और अंतर्मुख में शायिक सम्यक को।
हाँ, परंतु उसमें वो अनुभाग अधिक अनुभाग के साथ आया था और उसमें कम से कम अनुभाग कांडक का घात किया है ऐसा जीव लेना। इसलिए यहाँ विशेषार्थ में क्या देखते हैं, विशेषार्थ हुआ, विशेषार्थ 29 पेज पर, जो तत्प्रायोग्य, तत्प्रायोग का अर्थ ख्याल में है ना, क्षायिक समय दृष्टियों में जो उत्कृष्ट होगा, मैक्सिमम होगा, उत्कृष्ट अनुभाग के साथ क्षायिक सम्यक्त को प्राप्त होता है, उसका क्रियांतर के पूर्व, क्रियांतर ने अन्य क्रियाएं, कौन से क्रियाएं होती है यहाँ पर,
ये तो
क्रिया करके क्षायिक हुआ है, यानी क्या किया उसने, अनंतानुबंधी की विषय योजना की और दर्शन मुनि की क्षपना की, ये क्रियाएं कहलाती है। नहीं, अभी यहाँ अन्य क्रियाएं ने, अभी यहाँ जो क्रिया है ना क्षायिक सम्यक्त को प्राप्त होता है उसकी बात चल रही है। ये कितने काल तक की बात है, हमने स्वामित्व तो पहले देख लिया है, अभी हमने 14-15 पुरुष पर स्वामित्व देखा, अब यहाँ अन्य बात है। यहाँ जो क्रियांतर कहेंगे ना, क्षायिक सम्यक्त तो होने के बाद अभी कौन सी क्रिया होगी उसकी यह बात चल रही है।
हाँ,
अनंतानुबंधी, अभी एक क्षायिक समय दृष्टि है ऑलरेडी, हाँ, तो अभी कौन सी क्रियाएं होगी,
अभी तो वो पांचवे गुण स्तर में,
अभी क्या कहते हैं, अभी उसका उत्कृष्ट लगातार रहना चाहिए, यानी जब क्षायिक समय दृष्टि हुआ है तो उसका उत्कृष्ट अनुभाग है, तो 33 सागर तक रहेगा तो उसका उत्कृष्ट अनुभाग चलेगा, कि जगन्य हो जाएगा?
नहीं, कुछ रहेगा।
हाँ, रहेगा। क्यों? जब तक वो अभी क्षायिक है ना, अब जब तक श्रेणी नहीं चढ़ता है तब तक उसके अनुभाग में कोई परिवर्तन नहीं। भले उसकी स्थितियां कम हो रही है, अनुभाग तो जितने निषेक पड़े हैं उनमें उतना ही अनुभाग रहेगा। अनलेस यहाँ क्रियांतरण श्रेणी चढ़ेगा तभी उसके अनुभाग कांडक घात होगी।
ये चौथा गुणस्थान वर्ती जीव जो देव में है वो मनुष्य में आएगा तो चौथे में से पांचवे में जाएगा तभी भी अनुभाग
नहीं, वहाँ नहीं रहे बताए यहाँ पर। यहाँ तो यहाँ उसकी चर्चा ही नहीं की है, चौथे से सातवें में जाने वाले की यहाँ चर्चा नहीं की है। यहाँ तो केवल क्या लिया है, देखो हम देखते फिर विशेषार्थ में। विशेषार्थ पढ़ने के पहले ऊपर की बात देखेंगे तो आपको और ख्याल में आएगा। देखो 40 नंबर का जो पॉइंट है ना ऊपर, उसमें चौथे नंबर की लाइन, क्षायिक सम्य दृष्टियों में मिला मुनि कर्म की उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का जघन्य काल अंतर्मूर्त, अंतर्मूर्त तक वो उत्कृष्ट रहेगा और उत्कृष्ट काल कुछ अधिक 33 सागर है। यानी क्षायिक समय दृष्टि हुआ है, उत्कृष्ट अनुभाग है, अब वो मरकर सर्वार सिद्धि में गए हैं। उत्कृष्ट अनुभाग वाला लिया ना, तो सर्वार सिद्धि में गए हैं तो ये मुनि हुए तो कोई उस अनुभाग में तो फर्क नहीं पड़ा था। सर्वार सिद्धि में जाने वाले तो मुनिराज है, फिर भी उनके उत्कृष्ट अनुभाग का स्वामी कहा। अब वो सर्वार सिद्धि में लगातार 33 सागर तक रहे, उतना ही अनुभाग उनका रहेगा। निषेक कितने ही खिर जाएंगे, परंतु जितने निषेक है उसमें वो उत्कृष्ट अनुभाग वाले परमाणु पड़े हैं। अब वहां से फिर मनुष्य में आएंगे, मनुष्य में आने के बाद जब शपक श्रेणी चढ़ेंगे, अब उपशम श्रेणी चढ़ के उतरेंगे तो उनका अनुभाग का घात होगा, तब उसको अनुत्कृष्ट कहेंगे। अब हम फिर नीचे पढ़ते विशेषार्थ में, तत्प्राय के उत्कृष्ट अनुभाग के साथ क्षायिक समय तो जो प्राप्त होता है उसका क्रियांतर के पूर्व कम से कम एक अंतर्मूर्त काल तक, यानी क्षायिक हुआ है उत्कृष्ट अनुभाग के साथ और अंतर्मूर्त में श्रेणी चढ़ा तो उसके क्रिया हुई और उसने अनुभाग कांडक घात किया तो उसका अनुभाग अनुत्कृष्ट हुआ। तो क्रियांतर यानी उपशम यक्ष क्षपक श्रेणी दोनों ही ले सकते हैं हम, श्रेणी चढ़ा। यानी क्रियांतर क्या अर्थ होता है, श्रेणी, श्रेणी चढ़ना। उसके पूर्व कम से कम एक अंतर्मूर्त काल तक, यानी क्षायिक होते ही उसी एक दो समय में वो श्रेणी नहीं चढ़ेगा, अंतर्मूर्त तो रहेगा और फिर श्रेणी चढ़ेगा और अधिक से अधिक साधिक 33 सागर काल तक अवश्य ही अवस्थान, अवस्थान है उतना का उतना रहना, अवस्थान रहता है। अनुभाग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, निषेकों में तो वो गुणश्री ये निर्जरा वगैरह हो रही है, इसलिए यहाँ उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का जघन्य काल अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट काल साधिक 33 सागर कहा है। इसी प्रकार अभी अनुत्कृष्ट का कितना होगा काल, इसी प्रकार जो अनुत्कृष्ट अनुभाग के साथ क्षायिक सम्यक्त को प्राप्त होता है या क्रिया द्वारा उत्कृष्ट अनुभाग का घात कर अनुत्कृष्ट अनुभाग कर लेता है। अब जिसके ऑलरेडी अनुत्कृष्ट के साथ ही क्षायिक हुआ है, क्योंकि पहले उसने बड़ा कांडक घात किया है, अनुभाग ज्यादा घटाया है, ऐसा जो क्षायिक को प्राप्त हुआ है, अब उसका अनुत्कृष्ट कितने काल तक रहेगा बोलो। नहीं आपने, हाँ नहीं, जघन्य हमको घटित करना है। हाँ, क्योंकि उत्कृष्ट तो 33 सागर साधिक हमने देखा था, अंतर्मूर्त क्यों,
अंतर्मूर्त पे सपड़ा कर
श्रेणी चढ़ेगा तो क्या होगा, अनुत्कृष्ट का अनुत्कृष्ट ही रहेगा। कब तक अनुत्कृष्ट रहेगा, अनुत्कृष्ट कब तक कहलाएगा? हाँ दसवें के अंत तक जघन्य हुआ तो भी वो अनुत्कृष्ट ही कहलाएगा, जो उत्कृष्ट नहीं वो सारा अनुत्कृष्ट। हाँ, इसीलिए मैंने खास प्रश्न पूछा, दसवें के अंत तक तो कौन सा क्षपक दसवा, फिर दोबारा अनुत्कृष्ट किसको कहना, जो उत्कृष्ट नहीं वो अनुत्कृष्ट। पहले हमने देखा था उत्कृष्ट किसको होता है, तो उत्कृष्ट जो क्षपणा में जो कोई जघन्य अनुभाग का घात करके जो क्षायिक हुआ है उसके उत्कृष्ट होता है। उसका उत्कृष्ट की जितने काल तक रहेगा, तो उसको हमने देखा जघन्य अंतर्मूर्त उत्कृष्ट जो साधिक 33 साल है। अभी हम अनुत्कृष्ट की बात कर रहे हैं, जो अनुत्कृष्ट के साथ क्षायिक हुआ है, पहले हम उसका लंबा काल घटित करेंगे फिर जघन्य पर आते हैं। अनुत्कृष्ट के साथ ही क्षायिक हुआ है और फिर वो मुनिराज थे, फिर सर्वार सिद्धि में गए, वहां से आए, फिर जब उन्होंने श्रेणी चढ़ी तब वो अनुत्कृष्ट हो गए, यानी उसको लंबाओ ना काल, पूर्व कोटि का भव ले लो और अंत में जाके उन्होंने क्षपणा की। तो अनुत्कृष्ट खत्म कब होगा? फिर उत्कृष्ट तो होने से रहा, अनुत्कृष्ट भी उत्कृष्ट नहीं होगा, तो उसके लिए उसका एंड होने के लिए क्या तरीका है? क्षपणा पूरी होनी चाहिए कि सत्ता में से ही नष्ट हो जाए, यानी वो जघन्य भी न रहे, क्योंकि जघन्य वाला भेद भी अनुत्कृष्ट का भेद है। तो जब क्षपणा पूरी होती है क्षपक श्रेणी में दसवें गुणस्थान के अंत समय में, वो अंतिम समय है मुनि की सत्ता का, जब तक सत्ता है तब अनुभाग भी है, अब सत्ता ही नष्ट हो गई, तो 12वें का प्रथम समय वो सत्ता ही नहीं है उसकी, तो अनुत्कृष्ट नहीं रहा। तो यहां इसलिए हमको जघन्य काल घटित करना है, कोई अनुत्कृष्ट के साथ क्षायिक समय दृष्टि हुआ है तो उसका क्षपणा करके मुनि का नाश करने के लिए कितना समय लग सकता है? मिनिमम अंतर्मूर्त, इसलिए जघन्य काल अंतर्मूर्त का, अनुत्कृष्ट का। क्षायिक समय दृष्टियों में अनुत्कृष्ट का जघन्य काल अंतर्मूर्त, क्यों? क्षपणा पूरी कर देता है एक अंतर्मूर्त में, क्षायिक होते ही एक अंतर्मूर्त में वो श्रेणी भी चढ़ेगा और क्षपणा भी करेगा। तो यहाँ क्या लिखते, देखो अभी हम यहाँ पढ़ेंगे,
क्षायिक समय दृष्टि तो चौथे गुणस्थान से सातवें गुणस्थान तक प्राप्त कर सकता है।
हाँ, क्षायिक समय दृष्टि चौथे से सातवें में जाएगा। हाँ,
जो मनुष्य ने चौथे गुणस्थान में ऊपर,
क्योंकि जो आया है सर्वार सिद्धि में से, हाँ, वो तो चौथे में ही है।
नहीं, उस जब भी क्षायिक प्राप्त करता है,
क्षायिक प्राप्त करता है
मनुष्य, जो क्षायिक समय,
जो मनुष्य क्षायिक होता है, हाँ,
उसने चौथे गुणस्थान में क्षायिक समय प्राप्त,
बरोबर,
तो उसका अनुभाग ज्यादा होगा, क्योंकि जो सातवें गुणस्थान वर्ती मुनि है उसका अनुभाग ज्यादा,
यानी क्षायिक उसने चौथे में किया है कि सातवें में किया है?
चौथे में किया है, उसकी अपेक्षा सातवें में कम होगा।
नहीं, ऐसा कहीं गुणस्थान में अनुभाग का घटना अगर यहाँ नहीं बताया है, सातवें में कम होगा वो बात यहाँ नहीं ली है, क्योंकि सत्ता में जो है ना उसकी बात चलती है, हम जो उसमें श्रेणी गुण श्रेणी ज्यादा देखते हैं या उसकी स्थिति ज्यादा घटी ऐसा देखते, वो यहाँ नहीं घटित होता है, क्योंकि जितने भी स्थिति भी घट जाए तो जितने निषेक है उसमें तो वो अनुभाग बना रहेगा यहाँ पर, यहाँ उसमें अनुभाग का घट नहीं, तो साधिक में जो कहते हैं ना,
क्योंकि चौथे को तो उदय तो तीनों का है, तीन कषाय का है, और सातवें को तो खाली संज्वलन का,
हाँ, संज्वलन का होने दो,
तो
परंतु
अनुभाग की अपेक्षा,
परंतु सत्ता बिल्कुल नहीं, सत्ता में सभी पड़े हैं जब तक उसका क्षय नहीं करता है, और क्षय करते समय सभी कर्मों का अनुभाग कम होगा, इसलिए वो निषेकों की अपेक्षा सोचो मत, यहाँ चौथे में है या सातवें में है उसमें अनुभाग में कोई परिवर्तन नहीं बताया है।
चौथे से पांचवें में रहेगा तभी
कुछ
भी
नहीं,
करण परिणाम तो तभी भी होते हैं,
करण परिणाम होते हैं, परंतु वहाँ मोहनी के अनुभाग में कोई, सत्ता में पड़े हुए अनुभाग में कोई परिवर्तन नहीं है, उदय रूप अनुभाग में होगा, क्योंकि उसका उदय तो है वो तो जिसको हम कहते ना देशघाती रूप से उदय हो रहा है, और ये उसके लिए उत्कृष्ट की बात चल रही है अपनी, क्योंकि द्विस्थानिक तो हो जाता है, हमने देखा था समय दृष्टि तो द्विस्थानिक होता है, तो द्विस्थानिक में भी अनंत स्पर्धक है, घट जाएगा फिर भी उसका वो ऐसा नहीं घटेगा कि उसको हम सत्ता में जो है ना, जब घटता है तो सभी परमाणुओं में नहीं घटता, कुछ परमाणुओं में घटेगा, फिर भी उतने अनुभाग वाले विभक्ति बनी रहेगी। निषेकों में कैसे कहते हम, निषेकों में जब हम गुणश्रेणी निर्जरा आदि देखते हैं ना, कांडक घात हुए बिना केवल नीचे अपकर्षण होता है, तो क्या होता है, निषेक तो बने रहते हैं, उसमें से कुछ कुछ परमाणु नीचे स्थिति घटती है, ऐसे कुछ कुछ परमाणुओं का अनुभाग घटेगा पर उससे सत्ता का अनुभाग नहीं घटेगा। देखो यहाँ हम विशेषार्थ की चौथी लाइन देख रहे थे। इसी प्रकार जो अनुत्कृष्ट अनुभाग के साथ शायिक सम्यक्त को प्राप्त होता है या क्रिया द्वारा, क्रिया द्वारा ने अभी वो शायिक सम्यक्त तो प्राप्त हुआ था उत्कृष्ट अनुभाग के साथ, फिर उपशम श्रेणी चढ़ के उतरा तो उसने अनुत्कृष्ट कर दिया, ये क्रिया के द्वारा। उत्कृष्ट अनुभाग का घात कर अनुत्कृष्ट अनुभाग कर लेता है उसे उसका अभाव करने में, क्योंकि एक बार अनुत्कृष्ट हुआ है क्षायिक समय दृष्टि में, अभी वहां दोबारा उसका उल्टा ऐसा उत्कृष्ट तो नहीं होगा जितना है उससे, अभी तो क्रिया के द्वारा तो कम ही होगा। तो अभाव करने में कम से कम अंतर्मूर्त काल और अधिक से अधिक साधिक 33 सागर काल लगता है। क्यों? वो एक 33 सागर का भव करके फिर मनुष्य होगा और उस भव में वो सपना करेगा चारित्र मोह की। यहाँ कौन सी प्रकृति उसकी बात है? मूल प्रकृति की, मोहनी की बात चल रही है। इसलिए यहाँ अनुत्कृष्ट अनुभाग का भी जघन्य काल अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट काल साधिक 33 सागर कहा है। ये तो क्षायिक में बात हुई, अब उपशम सम्यक्त्व में घटित करेंगे। तो पहले उपशम सम्यक्त्व का काल कितना है याद है मंजुबेन? अंतर्मूर्त, जघन्य के उत्कृष्ट, जघन्य भी और उत्कृष्ट भी अंतर्मूर्त ही है। तो यहाँ लिखते हैं उपशम सम्यक्त्व का जघन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है और इतने काल तक दोनों प्रकार के अनुभाग का अवस्थान संभव है, यानी उपशम सम्यक दृष्टियों के लिए उत्कृष्ट कितने काल तक रहा? जब तक उपशम सम्यक्त्व है तब तक, क्योंकि उसके काल में उसने अन्य कुछ क्रिया नहीं की विषय योजना आदि, तो उसका लगातार उतने अंतर्मूर्त, उतना जो अंतर्मूर्त बड़ा है उपशम सम्यक्त्व का, तो उत्कृष्ट के साथ आया है। अनुत्कृष्ट के साथ आया हो तो उसका भी अंतर्मूर्त घटित होगा। तथा यहां भी क्रियांतर, यहां कौन सी क्रिया होगी? क्रियांतर यानी अन्य क्रिया, यहां कौन सी संभव है उपशम सम्यक्त के काल में? विसंयोजना भी होगी और उपशम सम्यक्त है तो द्वितीय उपशम में उपशम श्रेणी भी चढ़ेगा, ख्याल में आते? उपशम सम्यक्त इतना ही कहा है, उसमें प्रथम उपशम भी हो सकता है। तो क्रियांतर में विसंयोजना या फिर उपशम श्रेणी, यानी द्वितीय उपशम के साथ जो उपशम श्रेणी चढ़ता है उसकी बात है। क्षायिक के साथ वाले उसकी यह बात नहीं है, क्यों? हमारा प्रकरण मार्गणा उपशम सम्यक्त की है, उपशम सम्यक दृष्टियों की बात चल रही है। तो यहां भी क्रियांतर अंतर्मूर्त काल के पूर्व संभव नहीं है उपशम सम्यक्त तो प्राप्त होने पर। अभी हम प्रथम उपशम की बात करेंगे। पहले किसी ने प्रथम उपशम सम्यक्त तो प्राप्त किया, जो कोई अनुभाग है वहां पर बना रहा, अभी हम उत्कृष्ट के साथ उसने प्राप्त किया, तो एक अंतर्मूर्त में जब वो विसंयोजना करेगा तो उसका अनुत्कृष्ट हो जाएगा, परंतु अंतर्मूर्त के पहले तो नहीं करेगा। इसलिए कहते उसका क्रियांतर के द्वारा वो करने के लिए अंतर्मूर्त काल के पूर्व तो वो नहीं घटित होगा। अब हम द्वितीय उपशम की बात करेंगे। द्वितीय उपशम की सम्यक्त की प्राप्ति कौन से गुणस्थान में होती है? कौन सा जीव द्वितीय उपशम करता है?
सातवें गुणस्थान के अंदर।
हाँ, सातवेंपन उसका सम्यक्त कौन सा होता है तभी? हाँ, क्षोपशम कहो या वेदक कहो। तो ये जो क्षोपशम सम्यक दृष्टि है सातवें गुणस्थान में द्वितीय उपशम सम्यक्त प्राप्त करेगा और श्रेणी, तभी हम उसको उपशम सम्यक्त कहेंगे। वहां जितना अनुभाग है जब वो श्रेणी चढ़ेगा तब वो अनुभाग घटाएगा, परंतु यहाँ अगर हमको उपशम सम्यक्तियों में उत्कृष्ट घटित करना है तो प्रथम उपशम वाले को लेना पड़ेगा। परंतु उपशम सम्यक्तों में क्या क्या क्रियांतर होते हैं कहेंगे तो ये दोनों ही क्रियाएं संभव है। निकालो उत्कृष्ट उपशम सम्यक्तियों में उत्कृष्ट, अभी हमने 15 पेज पर देखा था, 14 में देखो, 14 में नीचे से चौथी लाइन, जो उपशम सम्यक दृष्टि मिला क्या? मौनीय कर्म के अपने योग्य हर जगह डाला है। उत्कृष्ट अनुभाग की सत्ता से युक्त होता हुआ जब तक प्रथम अनुभाग कांडक का घात नहीं करता। अनुभाग कांडक घात भी बहुत बार होते हैं, पहला करते ही उसका उत्कृष्ट से अनुत्कृष्ट हो जाएगा, इसलिए यहाँ उसको लिया। अब आते हैं मूल पेज पर। क्रियांतर अंतर्मूर्त काल के पूर्व संभव नहीं, इसलिए इसमें उपशम सम्यक दृष्टियों में उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग का, जघन्य और उत्कृष्ट दोनों प्रकार का काल अंतर्मूर्त कहा है। अब सासादन सम्यक्त्व, ये सम्यक्त्व मार्गणा चल रही है। सम्यक्त्व मार्गणा की अपेक्षा जीवों के कितने भेद होते हैं? प्रेरणा बिना आपको याद हाँ सात बोलो कौन से सात? ये नाम कहीं से संख्या याद आ गई हाँ। छह होते अच्छा हाँ। सम्यक दृष्टि तीन प्रकार के, उपशम सम्यक्त्व, वेदक सम्यक्त्व और क्षायिक सम्यक्त्व। और जो इनको सम्यक्त्व नहीं है ऐसे कौन है? मिथ्या दृष्टि, सांसाधन और मिश्र, सम्यक मिथ्यात्व वाले। तो उसमें यहाँ हम सांसाधन की बात देख रहे हैं। संयम में सात होते हैं, वो मुझे पता है कि वो संयम क्या याद रह गया था हाँ। सांसाधन सम्यक्त्व का जघन्य काल एक समय, ये गुणस्थान का ही जघन्य काल एक समय है। और उत्कृष्ट काल छह आवली होने से इसमें उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग का जघन्य काल एक समय। ये उत्कृष्ट किसके होगा? उपशम सम्यक्त्व के काल में जिसको उत्कृष्ट अनुभाग था, क्योंकि उपशम सम्यक दृष्टि सासाधन में आता है तो उसको उत्कृष्ट रहेगा। एक समय में सासाधन में रहा और फिर चला गया मिथ्यात्व में, तो एक समय के लिए उत्कृष्ट हुआ। और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त कहा है, अंतर्मूर्त ये छह अवली है ना, वो अंतर्मूर्त ही है। अब सम्यक मिथ्यात्व की बात करेंगे। जिस मिथ्या दृष्टि जीव के तत्प्रायोग्य यानी उसके योग्य उत्कृष्ट अनुभाग में एक समय शेष रहने पर सम्यक मिथ्यात्व, वो ग है ना वो इकार के अंदर चाहिए, सम्यक मिथ्यात्व गुणस्थान होता है। क्या कहते हैं? मिथ्या दृष्टि जीव है, उस उत्कृष्ट अनुभाग का बंद करता है, उसने बंद किया। बंद करने के बाद हम देखते हैं एक अंतर्मूर्त में वो अनुत्कृष्ट हो ही जाता है। अनुत्कृष्ट होने के लिए जितना अंतर्मूर्त लगता है, मान लेते हैं 100 समय लगते हैं, तो 99 समय बीत गए और 100वें समय में वो तीसरे गुणस्थान में आया, तो तीसरा गुणस्थान का उत्कृष्ट के साथ एक समय होगा, बाद में नियम से अनुत्कृष्ट होगा ही। तो इसलिए कहते हैं जिस मिथ्या दृष्टि जीव के तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट अनुभाग में एक समय शेष रहने पर सम्यक मिथ्या तो गुणस्थान होता है, उस सम्यक मिथ्या दृष्टि के, ये ग बाहर ही दूसरे सब, उत्कृष्ट अनुभाग एक समय तक देखा जाता है। ये बात ख्याल में आई? और जो मिथ्या दृष्टि तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट अनुभाग के साथ सम्यक मिथ्या तो गुणस्थान को प्राप्त होकर वहां उसके साथ ही रहता है, उस सम्यक मिथ्या दृष्टि के अंतर्मूर्त काल तक उत्कृष्ट अनुभाग देखा जाता है। यानी वो उत्कृष्ट बंद करके आया है और उसका जो अंतर्मूर्त है ना उत्कृष्ट रहने का, वो उसने तीसरे गुणस्थान में बिताया, तो अंतर्मूर्त वहां भी घटित होता है। यही कारण है कि सम्यक मिथ्या दृष्टि के उत्कृष्ट अनुभाग का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त कहा है। यहाँ अनुत्कृष्ट अनुभाग का जघन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। ये अनुत्कृष्ट का एक समय क्यों नहीं होगा? हाँ, एक तो मरण नहीं है, ये गुणस्थान ही अंतर्मूर्त तक रहता है, और इस गुणस्थान में आने पर उत्कृष्ट कोई सवाल नहीं होने का दोबारा, क्योंकि उत्कृष्ट का अनुभाग होगा, बंद करेगा तो ही उत्कृष्ट हो सकता है। अनुत्कृष्ट में से उत्कृष्ट होने का तरीका क्या है? उत्कृष्ट का बंध होना चाहिए। उत्कृष्ट का बंध कौन करता है? मिथ्या दृष्टि, और ये सम्यक मिथ्या दृष्टि है। तो जितना अनुभाग लेकर आया है, अनुत्कृष्ट लेकर आया है, तो यहाँ तो उत्कृष्ट का बंध नहीं होगा, दोबारा मिथ्यात्व में जाएगा तब बंध हो सकता है। इसलिए जितना उसका काल है सम्यक मिथ्यात्व का, उतना ही उसका रहेगा लगातार, इसलिए उसको अंतर्मूर्त कहा। उसमें वो अनुत्कृष्ट का एक समय घटित नहीं होगा। उत्कृष्ट का एक समय क्यों घटित हुआ था? पूर्व भव में उसने, पूर्व भव ने मिथ्यात्व गुण स्थान में उत्कृष्ट किया था, अंतर्मूर्त में वो घट जाता है। वो अंतर्मूर्त में एक समय बाकी था, उसी समय उसने तीसरा गुण स्थान प्राप्त किया है, और एक समय के लिए उत्कृष्ट रहा और फिर अनुत्कृष्ट हुआ। ऐसा उल्टा अनुत्कृष्ट में एक समय घटित नहीं होता है।
हमने जो उत्कृष्ट बंद करता है उसकी अपेक्षा जो चौथे गुण स्थान को प्राप्त होता है, तो हमने देखा था उत्कृष्ट बंद करके अंतर्मूर्त के पश्चात ही वो चौथा गुण स्थान प्राप्त करता है। तो तीसरा गुण स्थान
उत्कृष्ट बंद करके अंतर्मूर्त में किसके लिए क्या था? निषेक स्थिति में, स्थिति की अपेक्षा बात की, ये सत्ता में जो है ना वो पड़ा रहता है। उसके अनुभाग कांडक घात हुए बिना वहाँ उसका अनुभाग कम नहीं होगा। हाँ
नहीं, स्थिति नहीं, तो चौथे गुण स्थान में वो तो उत्कृष्ट तो नहीं हो सकता
अभी बंद उसका। तो चौथे में हमने देखा था, वो तो उसका अनुभाग कांडक भी हो जाते हैं उसके। शेष कथन सुगम है। संगियों में मुनि कर्म की उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का जघन्य काल एक समय, ये संगी मार्गणा में देख रहे हैं। किसकी बात चल रही है? उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का जघन्य काल एक समय, और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। यानी वो एक समय कैसे होगा? अनुत्कृष्ट में था और भव के अंत में उसने उत्कृष्ट बांधा। क्योंकि संगी में ऐसा तो नहीं कह सकते कि उत्कृष्ट लेकर आया था और एक समय में अनुत्कृष्ट हुआ। क्यों? असंगी में तो उत्कृष्ट नहीं होगा ना। तथा अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का जघन्य काल एक समय, ये वैसा भी घटित करना है। अनुत्कृष्ट के साथ आया है, फिर उत्कृष्ट का बंद किया, या वो अनुत्कृष्ट था, वो जैसे हमने उत्कृष्ट का एक समय घटित किया, वैसे उत्कृष्ट था, उसका एक अंतर्मूर्ति में अनुत्कृष्ट हुआ, अनुत्कृष्ट के साथ एक समय रहा और मरकर क्या हुआ उसका? असंगी में उत्पन्न हुआ, क्योंकि संगी मार्गणा नष्ट होनी चाहिए। तथा अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल सौ पृथक्त्व सागर। ये पृथक्त्व का अर्थ होता है कुछ, अभी 3 से 8, 3 से 9 जो कोई कहते हैं, कहीं कहीं पृथक्त्व का अर्थ ज्यादा भी होता है, जैसे हम पंचेन्द्रिय तिर्यंच आदि में देखते हैं। तो यहाँ सौ पृथक्त्व सागर, यानी कुछ सौ सागर, यानी हम कहेंगे 700 सागर, 800 सागर, उसको क्या कहेंगे? सौ पृथक्त्व सागर। ऐसा क्यों कहा? ये संगी में रहने का उत्कृष्ट काल, तिर्यंच की बात नहीं, अकेले संगी पंचेंद्रिय जो है कौन कौन हो गए उसमें?
चारों गति के,
परंतु उसमें लगातार संगी पंचेंद्रियों में रहे तो सौ पृथक्त्व सागर तक ही रह सकता है। त्रस में रहे लगातार तो कितना हमने देखा था? हाँ, साधिक 2000 सागर। त्रस पर्याप्तों में अगर हमने तो वो 2000 सागर देखा था, परंतु यहाँ 100 पृथक्त्व सागर, संगी में रहने का उत्कृष्ट काल। तो अनुत्कृष्ट के साथ ही रहा वो, अनुत्कृष्ट के साथ ही संगी में उत्पन्न हुआ, और लगातार संगी 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 उसके बहु होते रहे तो 100 पृथक्त्व सागर तक रहा अनुत्कृष्ट के ही साथ। उसने उत्कृष्ट बंद किया ही नहीं तो ये काल घटित होगा। इसको कहते उसकी उत्कृष्ट काय स्थिति, संगी में रहने का उत्कृष्ट काल। विशेषा जो संगी भव के अंत में एक समय तक उत्कृष्ट या अनुत्कृष्ट अनुभाग के साथ रहकर दूसरे समय में असंगी हो जाता है। ये कंडीशन महत्व की है, क्योंकि संगी में से मरकर संगी रहेगा तो उसको वो संगी का एक समय घटित नहीं होगा। उसी उस संगी के उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का जगन्य काल एक समय उपलब्ध होता है। शेष कथन स्पष्ट ही है। उत्कृष्ट में लगातार अंतर्मूर्त से ज्यादा काल नहीं हुआ उत्कृष्ट का, क्योंकि वो नियम से अनुत्कृष्ट हो ही जाता है। अब आहारक की अपेक्षा, ये आहार मार्गणा की अपेक्षा आहारक कहा, इसके भेद कौन से हैं मंजूबेन? आहारक और अनाहारक। हाँ, अनाहारक कब कब होते हैं? कर्मण काय योग में, हाँ, चौदवे में। अब यहाँ चौदवे को लेना कि नहीं लेना? मोहनी की सत्ता वाले लेने। हाँ, तो कर्मण काय योग और किसको लेना? अनाहारक में और कौन आता है? बिना मोहनी की सत्ता वाला ले लो। विग्रह गति बता दी उन्होंने,
केवली समुद्र
के अनाहारक की बात चल रही है, केवली समुद्र
तीन समय के लिए
अनाहारक की बात। हाँ, नहीं नहीं, आहारक तो बाकी सभी है। अनाहारक कब होते हैं? तो विग्रह गति में होते हैं। गुणस्थान पहला, दूसरा और चौथा, तीसरा नहीं, क्यों? तीसरे में मरण नहीं होता है। पहला गुणस्थान, दूसरा गुणस्थान, चौथा गुणस्थान और हाँ कर्मण का योग कब होता है? तो अनाहारक कब होता है? तो तेरहवें में। चौदहवें में तो अनाहारक है ही, सिद्ध भगवान भी अनाहारक है, परंतु यहाँ मोहिनी की सत्ता वाले लेना है, इसलिए तेरहवें चौदहवें को हम छोड़ देंगे। तो यहाँ बाकी जो है आहारक कहाँ से कहाँ तक हो गया? अभी मोहिनी की सत्ता है और जीव आहारक है, तो अभी गुणस्थान बताओ 1 से 10, आप क्या कहते हैं? फिर से प्रश्न, मोहिनी की सत्ता वाला जीव, सत्ता वाला जो आहारक है, ऐसे जीवों के गुणस्थान कौन से हैं? बोलो। हाँ, मारा मोहिनी की सत्ता वाला चाहिए 10 तक। हाँ, 11वें वाले को लेना श्रेणी में। हाँ, कौन सा लेना? द्वितीय उपशम के क्षायिक, क्षायिक नहीं लेना? क्यों नहीं लेना? मरण की कहाँ आहारक है कि नहीं वो बात चल रही है। अनाहारक वो तो विग्रह गति में जाता है तो गुणस्थान चौथा है, उसकी बात नहीं चल रही, हम आहारक की बात ले रहे हैं। आहारक यानी क्या है? आहारक किसको कहना? नो कर्म वर्गणा का जो ग्रहण करता है, तो वो कौन से जीव करते हैं? विग्रह के गति के बाद के सब करते हैं वो, उसका यानी जो पहला समय होता है शरीर ग्रहण करने का, तब से लेकर उसको आहारक कहेंगे। कब तक? मरण के समय तक। तो गुणस्थान कौन से होते हैं? सभी जी गुणस्थान हो गए ना, एक्सेप्ट
मरण का, कर्मण का योग।
हाँ,
कर्मण का योग रहता है।
अभी वो नहीं लेना है, आहारक ले रहे हम। आहारक जो है कर्मण का योग को छोड़कर, यानी जो सभी जीव बाकी तो लेना है विग्रह गति के अलावा, अन्य तो सभी। तो कहां तक लेना है? सत्ता कहां तक है? 11वें तक। 12वें वाले को सत्ता नहीं है। अकेले हम पूछे, अभी मोहिनी की बात भूल जाओ, आहारक जीवों के गुणस्थान कौन से ऐसे पूछेंगे तो हाँ 1 से 13 गुणस्थान, क्योंकि संयोग केवली है, शरीर का ग्रहण चल रहा है वहां पर भी, नो कर्म वर्गणा का ग्रहण वहां भी चल रहा है, तो उसको कहेंगे आहारक। ये कौलाहार की बात नहीं है, मुंह से भोजन करते उसकी बात नहीं है, क्या है ना? तो वहां योग है तो वहां नो कर्म का ग्रहण भी चल रहा है। हाँ, सब जगह आहारक है, उपवास करेंगे तो भी आहारक कहेंगे। हाँ, देखो आहारक की अपेक्षा, अभी अपेक्षा ख्याल में आई ना पहले, मोहिनी कर्म की उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। आहार कब तक है? अभी हमने देखा मरण के समय तक। तो मरण के एक समय पूर्व वो
उत्कृष्ट क्या?
अनुत्कृष्ट था एक समय पहले, मरण के समय उत्कृष्ट हुआ, उसके बाद मरने के बाद उसका उत्कृष्ट रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा, परंतु वो अनाहारक हो जाएगा। कब अनाहारक कहलाएगा? मोड़ सहित जाएगा तो। यदि मोड़ के बिना रुजुगति से जाता है तो आहारक का आहारक ही रहेगा। हमें आहारक मार्गणा में अनाहारक करना है उसको, तो आहारक में उत्कृष्ट के साथ एक समय कौन रहेगा? मरण के समय में जिसने उत्कृष्ट बांधा है, उसके पहले अनुत्कृष्ट था, तो उसका एक समय घटित होगा। तो जघन्य काल उसका कितना है?
एक समय।
और किसी भी जीव के उत्कृष्ट कितना रह सकता है? अंतर्मूर्त। आहारक तो पूरा लाइफ टाइम आहारक है ना, तो उसके अंतर्मूर्त कभी भी उत्कृष्ट बन सकता है, तो उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त। तथा अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का जघन्य काल एक समय, वो भी अंत समय में भी घटित होगा या जन्म के समय में भी घटित होगा, आहारक होते ही अनुत्कृष्ट के साथ आया है। और उत्कृष्ट काल अभी आहारक रहने का उत्कृष्ट काल, इसका अर्थ क्या है? लगातार मरकर रुजुगति से अन्य गति में उत्पन्न होना चाहिए। बीच में कारमान का योग वाला होगा ही नहीं, तो उसका कितना काल है? तो उत्कृष्ट काल अंगुल के असंख्यात विभाग है, उसका प्रमाण कितना है? अंगुल का असंख्यात भाग, ये तो क्षेत्र बताया। क्षेत्र में जब हम काल गिनते हैं तो उस क्षेत्र में जितने प्रदेश है उतने समयों का काल, तो अगर हम उस समयों में गिनेंगे हाँ, तो कहते असंख्याता संख्यात अवसर्पिणी उत्सर्पिणी प्रमाण है। असंख्यात के तीन भेद मूल में कौन से तीन? परिता संख्यात, युक्ता संख्यात और असंख्याता संख्यात। उसमें से ये असंख्याता संख्यात प्रमाण अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी। एक अवसर्पिणी उत्सर्पिणी जाती है तो 20 कोड़ा कोड़ी सागर जाते हैं, ऐसे असंख्याता संख्यात। अनाहारकों में कार्मण का योगियों के समान भंग है। तो अनाहारक यानी विग्रह गति वाले, उसका जघन्य काल कितना है? अनाहारकों का जघन्य काल
एक
समय, क्योंकि एक विग्रह के ऐसे गया ना, और अधिक से अधिक काल तीन समय। तो यहाँ भी वो उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट का उतना काल जघन्य और उत्कृष्ट होगा। विशेषार्थ, यहाँ आहारकों में संगियों के समान काल का स्पष्टीकरण कर लेना चाहिए। मात्र इनकी काय स्थिति यानी लगातार आहारक रहने का काल अंगुल के असंख्यात वे भाग प्रमाण होने से अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का उत्कृष्ट काल उक्त प्रमाण कहा। कार्मण काय योगी अनाहारक ही होते हैं, क्या कहना? क्योंकि जो मोड़ सहित जाता है तो मोड़ के पहले वाली जो उसका जो गमन है तो वहां कार्मण का योग होता है। मान लेते एक मोड़ से गया तो उसको वहां पहुंचने के लिए दो समय लगते हैं, परंतु दूसरे समय में वो मिश्र का योगी हो जाता है। मोड़ के पहले पहले कार्मण का योगी, जो तीन मोड़ से जाता है, तीन मोड़ है ना, तो तीन समय तक कार्मण का योग, और फिर वहां चौथे समय में तो पहुंच जाता है उसको। इस प्रकार उत्कृष्ट कालानुगम समाप्त हुआ, यानी अधिक से अधिक लगातार रहने का काल उसको उत्कृष्ट काल कहते हैं। मैक्सिमम उत्कृष्ट अनुभाग और उत्कृष्ट काल। हाँ, पहले लाइन में आहारकों में संगियों के समान काल का स्पष्टीकरण करना चाहिए, इसका अर्थ चाहते हो? आहारकों में जगह निकाल। हाँ देखो, उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति कब होती है? जब बंद होता है। तो किसी जीव ने पहले उसका अनुत्कृष्ट था, मरण के समय अभी भी वो आहारक है, उसने उत्कृष्ट अनुभाग का बंध किया और मरकर विग्रह गति में गया, अनाहारक हुआ। तो आहारक रहते हुए उसका एक समय उत्कृष्ट रहा, वो अनुभाग रहेगा, वो अभी आहारक है ना, अनाहारक हुआ, मान लेते एक दो समय उसको अनाहारक रहा, फिर आहारक हो गया, बाद में तो उसका फिर वो उत्कृष्ट का अंतर्मूर्त तक रहेगा ही, परंतु बीच में ब्रेक आ गए ना, उसको आहारक के अनाहारक हो गया, तो उसका आहारक का एक समय वहां उत्कृष्ट के साथ एक समय, आहारक का एक समय नहीं। फिर से, क्या कोई जीव एक समय के लिए आहारक बन सकता है? अब यहां उत्कृष्ट की विभक्ति की बात नहीं चल रही है, आहारक का योग की बात नहीं चल रही है। आहारक का अर्थ क्या है? नो कर्म का वर्गना का ग्रहण करना। तो लब्धि अपर्याप्त भी हो तो उसके कितने समय तक आहारक रहेगा? वो जो उसका क्षुद्र भव ग्रहण प्रमाण, उसकी आयु है अंतर्मूर्त प्रमाण, उसकी जितनी आयु है तब तक तो आहारक रहेगा। एक समय के लिए आहारक हुआ और फिर दूसरे समय बीच में अनाहारक हुआ, ऐसा नहीं हो सकता। ये बात ख्याल में आई? हाँ, अभी आगे। उत्कृष्ट कालानुगम समाप्त हुआ, इसका अर्थ होता है उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का काल, वो जो हम देख रहे थे, ये अधिकार समाप्त हुआ। अब हमें जघन्य, लगातार जघन्य की बात चलेगी। अभी जघन्य को सोचो, और यहाँ मूल प्रकृति के जघन्य की बात होती है। पहले जघन्य अनुभाग विभक्ति कब होती है? सब मोहिनी इन जनरल, तो कब होती है? दसवें गुणस्थान के अंत समय में, एक समय के लिए। अब इसको पढ़ेंगे। जघन्य का प्रकरण है, निर्देश ने कथन दो प्रकार का है, ओघ और आदेश। ओघ की अपेक्षा मौनी कर्म की जघन्य अनुभाग विभक्ति वाले जीवों का, ये जीवों का नहीं, जीव का चाहिए, या एक ही जीव की अपेक्षा बात चल रही है यहाँ पर, अनेक भी जीव हो गए तो अपना अपना उसका काल कितना है? तो जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है, एक ही समय होता है, उसको आप जघन्य भी कह सकते हो, उत्कृष्ट भी कह सकते हो, क्योंकि इससे अधिक तो नहीं हो सकता। अंतिम समय लेना है, शपक सूक्ष्म सांप्राय का अंतिम समय, वो उसका जघन्य का काल है। और अजघन्य अनुभाग विभक्ति का जो जघन्य नहीं है, सूक्ष्म सांप्राय का अंतिम समय छोड़कर बाकी जो अनादि से ही जीव को पाया जाता है, वो क्या है? अजघन्य। वहां उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट वो सभी अजघन्य में आ गए, तो अजघन्य का काल कितना होगा? अनादि से लेकर वो सूक्ष्म सांप्राय के द्विचरम समय तक, उपांत समय तक, लास्ट बट वन समय तक, तब तक क्या कहेंगे? अजघन्य। और कोई अभी जीव क्षपक श्रेणी चढ़ा ही नहीं, या कोई चढ़ेगा ही नहीं, उसको कितना होगा? अनादि अनंत अभव्य जीव, कितना होगा उसका? अजघन्य, हमेशा अजघन्य ही रहेगा। कब से? अनादि से। तो कहते अजघन्य अनुभाग विभक्ति वाले जीवों का काल अनादि अनंत और अनादि शांत है। जो क्षपक श्रेणी चढ़कर दसवें में पहुंच गए, उनका अनादि शांत हो गया, और बाकी जीवों के जब तक उन्होंने नहीं चढ़ी तो अनादि अनंत। भव्य में भी कुछ ऐसे हो गए कि अनादि अनंत वाले, क्योंकि सभी भव्य तो मोक्ष नहीं जाएंगे। विशेषार्थ फिर भी यहाँ ऐसा कहने की पद्धति है, अभव्य में अनादि अनंत और भव्य में अनादि शांत, ऐसा कह देंगे। जनरल कथन ऐसा होगा। हाँ, मेजॉरिटी की भी अपेक्षा और भव्यों में पॉसिबिलिटी है, इसलिए भी कहेंगे। हाँ, परंतु वही भव्य लेना जो क्षपक श्रेणी चढ़ेंगे। विशेषार्थ मौनी की जघन्य अनुभाग विभक्ति क्षपक सूक्ष्म सांप्राय के अंतिम समय में होती है। उपशम श्रेणी वाले दसवें गुणस्थान में अंतिम समय में होगी कि नहीं होगी? नहीं, क्यों? वहां तो सत्ता भी है ना, जितने अनुभाग है वहां थोड़ा घटाया भी है, फिर भी अजघन्य का अजघन्य ही रहेगा। जब हम कहते हैं ना उत्कृष्ट में से अनुत्कृष्ट बना दिया श्रेणी में, वो उत्कृष्ट हो या अनुत्कृष्ट हो, वो जब तक क्षपक के अंतिम समय में नहीं पहुंचा है सूक्ष्म सांप्राय के, तब तक उस सबको नाम क्या है, अजघन्य। दो तरीके से ना, उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट, बस ये दो ही, और फिर जघन्य अजघन्य, ये दो ही। एक साथ चार भेद नहीं करना, उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट अजघन्य जघन्य, एक साथ चार नहीं लेना है, दो ही करना भेद। जो उत्कृष्ट नहीं वो अनुत्कृष्ट, और जो जघन्य नहीं वो सारा अजघन्य। देखो, मोनी की जघन्य अनुभाग विभक्ति क्षपक सूक्ष्म सांप्राय के अंतिम समय में होती है, इसलिए इसका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा। अजघन्य अनुभाग विभक्ति अभव्यों के अनादि से अनंत काल तक और भव्यों के अनादि से शांत काल तक होती है, ये ऐसा ही कहने की पद्धति है। क्योंकि जघन्य अनुभाग विभक्ति के प्राप्त होने के पूर्व तक वह अजघन्य होती है, इसलिए उसका काल उक्त प्रमाण कहा है। अब आदेश यानी मार्गणाओं में देखेंगे, अलग अलग मार्गणाओं में, नारकियों में, अब नारकियों में जघन्य कब होगी? हाँ, बहुत अच्छा। असंगी में जो असंगी के योग्य अनिहत समुत्पत्ति जिसको कहते हैं, अनुभाग घात कर जो यहाँ आया है, असंगी में से आया है, वो तो पहले ही नरक में उत्पन्न हो सकता है। हाँ, तो जब तक बढ़ाकर अनुभाग नहीं बांधेगा तब तक उसको जघन्य कहेंगे। तो नारकियों में मोहनीय कर्म की जघन्य अनुभाग विभक्ति का जघन्य काल एक समय, और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है, यानी अंतर्मूर्त के बाद उसने बढ़ाकर बांधा। अजघन्य अनुभाग विभक्ति का जघन्य काल, जो जघन्य नहीं है वो अजघन्य अनुभाग विभक्ति का जघन्य काल अंतर्मूर्त कम 10,000 वर्ष।
ये असंगी की अपेक्षा जो जघन्य कहा वो तो विग्रह गति में ही होगा,
नहीं वो तो निषेक में निषेक में देखा हमने वो, या अनुभाग बढ़ाकर सत्ता में स्थिति तो अधिक बांधेगा। हाँ। परंतु अनुभाग अभी उसने अधिक नहीं बांधा, ऐसा जीव लिया यहाँ पर।
अब जिस देखा था विग्रह गति में असंगी की अपेक्षा करता है, बाकी मिश्र का योग जब भी होता है तभी उसको,
वो तो हमने निषेकों में देखा था। देखो स्वामित्व निकालो, आदेश में स्वामित्व निकालना है जघन्य में, अभी हम उत्कृष्ट नहीं देख रहे हैं, 16 पुरुष पर। हाँ देखो 16 पेज पर
अनुभाग को बढ़ा के निकालते हैं।
आदेश की अपेक्षा नारकियों में मिला सबको, मोनिय का जघन्य अनुभाग किसके होता है? जो हत समुत्पत्तिक अनुभाग सत्कर्म वाला जीव, यानी जिसमें सत्ता का अनुभाग जिसमें कम कर दिया है, ऐसा जो जीव, असंगी जीव की बात है, असंगी पर्याय से आकर, ऐसा भी कोई असंगी हो सकता है जिसने संगी में से उत्कृष्ट अनुभाग करके असंगी में गया है और थोड़ा ही काल बीत गया है, तो उसने अनुभाग तो उतना ही है उसका, और उतने अनुभाग के साथ आया है, जघन्य नहीं किया है, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए कंडीशन कौन सी डाली, जिसने जघन्य कर लिया है लंबे काल तक असंगी में है, असंगी ने असंगी पंचेंद्रिय भी यहाँ लेना है, क्यों? ऐसा जीव ही नरक में उत्पन्न हो सकता है, मिनिमम अनुभाग वाला लेना है इसलिए, और वो भी पहले नरक में। असंगी पर्याय से आकर नारक पर्याय में उत्पन्न हुआ है, वह जब तक पुनः बंध के द्वारा अनुभाग को नहीं बढ़ा लेता है तब तक उसके जघन्य अनुभाग विभक्ति होती है। अब ये जब तक बढ़ा नहीं लेता उसके लिए यहाँ कितना काल कहा, देखो यहाँ काल मिनिमम एक समय भी हो सकता है, अधिक अंतर्मूर्त भी हो सकता है, ये जब तक की बात है ना, वो जब तक की बात हम काल में यहाँ समझ सकते हैं, ये जो अभी हमने 31 प्रेश पर देखा था।
सो यहाँ पे जो विग्रह गति में जो असंगी के जैसे जो हम अब स्थिति की अपेक्षा बात देखते हैं,
स्थिति की अपेक्षा
नहीं, तो वहाँ पे अंतकोड़ा कोड़ी स्थिति हो जाएगी, पर अनुभव का बढ़ोती नहीं होती।
हाँ, होगा ही, ऐसी बात नहीं। विग्रह गति में तो सवाल नहीं, बाद में भी वहाँ पर अनुभाग बंद जब बढ़ाकर बांधेगा तब उसका बढ़ जाएगा। इसी से सब पता चलता है ना। देखो क्या लिखते हैं, जघन्य अनुभाग का जघन्य काल कितना बताया, एक समय, यानी एक समय के पश्चात उसने बढ़ाकर बांधा। या उत्कृष्ट काल कितना है, अंतर्मूर्त, यानी अंतर्मूर्त के बाद बढ़ाकर बांधा। अजघन्य अनुभाग विभक्ति का जघन्य काल, देखो ये जो स्थिति बनती है ना, तो उसमें स्थिति बंध अध्यवसाय स्थान कारणभूत है, और अनुभाग का बंद, अनुभाग बंद अध्यवसाय स्थान से होते हैं, उसमें सूक्ष्मता और ज्यादा है ना। अब ये हमें जघन्य की बात तो हो चुकी, अब अजघन्य, जो जघन्य नहीं है वो सारा ही अजघन्य है, यानी पहले जो हमने उत्कृष्ट देखे थे वो भी अजघन्य ही कहलाएगा। कुछ भी हो, जघन्य केवल यहाँ नारकियों में जघन्य तो असंगी में से आया हुआ जीव ही लेना, बाद में जो कुछ है वो अजघन्य कहलाएगा। तो अजघन्य अनुभाग विभक्ति का जघन्य काल, अभी जघन्य काल इसका एक समय वगैरह हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, क्योंकि एक बार नरक में उत्पन्न होने पर अजघन्य होने का कोई सवाल नहीं है। क्या कहा, जघन्य, सॉरी, जघन्य होने का कोई सवाल नहीं। एक बार नरक में आया है किसी भी अनुभाग के साथ, तो उसका असंगी जैसा जघन्य हो सकता है कि यहाँ पर नरक असंगी में था, तो उसने असंगी के योग्य अनुभाग किया था, वो मरकर नरक में आया है इसलिए वो पूर्व का अनुभव चलता रहा, वो भले एक समय तक रहेगा या अंतर्मूर्त तक रहेगा, उससे ज्यादा तो नहीं। परंतु ऐसा कोई जीव है नारकी कि जिसका जघन्य था ही नहीं, अजघन्य है, पहले समय से ही अजघन्य मान लेते, तो फिर दोबारा वो जघन्य हो सकता है, हा? नहीं हो सकता, क्योंकि नारकियों में अन्य कोई वहां जघन्य होने का कोई तरीका ही नहीं। मनुष्यों में ही जघन्य वो पॉसिबल है कि सूक्ष्म सांप्राय के अंत समय में ओघ का जघन्य, नारकियों का आदेश का यानी मार्गणाओं का जघन्य कहाँ है, नारकियों में, असंगी में से आया हुआ जीव ही है। अब इसलिए क्या कहते दूसरी लाइन में, अजघन्य अनुभाग विभक्ति का जघन्य काल, मिनिमम काल कितना होगा,
10,000 वर्ष के,
जब तक वो मिनिमम नरक में रहेगा तो उसके लिए हम कहेंगे 10,000 वर्ष अजघन्य का। अब ये पहला अंतर्मूर्त जो हमने ना जघन्य का जो मैक्सिमम काल है कितना, अंतर्मूर्त, वो हमने मिनिमम आयु में से बात कर दिया, हमें अजघन्य का कम से कम काल देखना है। नारकियों में अजघन्य का कम से कम काल, तो हम छोटी में छोटी नरकायु लेते हैं, क्योंकि बाद में नारकी नहीं रहेगा ना, तो नरक के साथ अजघन्य का तो उतना ही काल रहेगा, तो हम 10,000 वर्ष के अजघन्य की स्थिति देखेंगे। उसमें से अभी हमने पहली लाइन में क्या करा, जघन्य की उत्कृष्ट काल कितना हो सकता है, अंतर्मूर्त, वो अंतर्मूर्त हम 10,000 वर्ष में माइनस करेंगे, तो ऐसा जीव लेना असंगी में से जघन्य के साथ आया है, पहले नरक में आया है, 10,000 वर्ष की आयु को लेकर आया है, अंतर्मूर्त तक तो जघन्य रहा और बाद में रिमेनिंग लाइफ टाइम तक अजघन्य रहा। इसलिए यहाँ क्या कहा, अजघन्य अनुभाग विभक्ति का जघन्य काल अंतर्मूर्त कम 10,000 वर्ष और उत्कृष्ट 33 सागर। क्यों, क्योंकि सातवें नरक में तो सभी अजघन्य वाले ही है और वो पूरी लाइफ टाइम तक तो अजघन्य ही रहेंगे, नारकियों के लिए अजघन्य। हाँ। ऊपर के नरक में विसंयोजना भी, विसंयोजना करेगा तो विसंयोजना से असंगी जितना हो जाएगा उसका, अजघन्य से अजघन्य ही रहा, अजघन्य में से अजघन्य ही रहा। अजघन्य में उत्कृष्ट हो तो भी अजघन्य कहेंगे, अनुत्कृष्ट है तो भी उसको अजघन्य कहेंगे। जो जघन्य नहीं है वो सारे अजघन्य। विसंयोजना भी कर ली, औषमिक सम्यक तो भी किसी ने प्राप्त किया, अजघन्य में से अजघन्य रहा, जघन्य नहीं हो सकेगा। जो असंगी के योग्य उतना तो नहीं करेगा। हाँ, तो क्या हुआ, जघन्य कैसे होगा, असंगी के योग्य कैसे होगा? अनुभाग घात भी करेगा तो कितना असंगी के योग्य थोड़ा ही हो जाएगा उसका। घात किया तो अजघन्य का अजघन्य ही रहा। अजघन्य में आप तरतमता कर सकते हैं, परंतु वो सारे का नाम अजघन्य है। हम उत्कृष्ट में से अनुत्कृष्ट कर किया ऐसा देखेंगे, परंतु उत्कृष्ट को भी अजघन्य कहेंगे और अनुत्कृष्ट को भी अजघन्य कहेंगे। क्या लाई बात,
असंगी की अपेक्षा वो जो 1000 सागर में पल्ले का संख्या बाबा कम वो जघन्य होगा।
आप फिर स्थिति पर गए क्योंकि उस स्थिति लंबे काल तक चली ना अपनी ये बात तो पहले नरक में घटित होगी, अब दूसरे नरक में उनका जघन्य अपने योग्य, अब वहां कहेंगे हम वो जो आपको जो कोई बात हो उनके लिए अपना जघन्य अलग होगा। अब यहाँ पढ़ते हैं हम, इसी प्रकार पहली ओली करना पृथ्वी में जानना चाहिए, यानी नरक इन जनरल बात करेंगे तो पहली पृथ्वी में जघन्य, उसको जघन्य कहेंगे। सभी नरकों में जघन्य किसका है, वो असंगी में से आया हुआ। अब अकेले पहले नरक में बात करेंगे वही कथन है, क्योंकि पहले ही नरक में आते हैं, अन्यत्र जाते ही नहीं है। तो कहते इसी प्रकार पहली पृथ्वी में जानना चाहिए, किंतु इतनी विशेषता है कि अब पहली पृथ्वी में अजघन्य का उत्कृष्ट काल घटित करना है। तो पहली उत्कृष्ट काल, जघन्य काल तो हमने देखा अंतर्मूर्त माइनस 10000 वर्ष, उत्कृष्ट काल का अर्थ है पहले नरक की उत्कृष्ट आयु लेनी है और अनुत्कृष्ट के साथ ही उसमें आया है तो वो एक सागर होगा। इतनी विशेषता है कि अजघन्य अनुभाग विभक्ति का उत्कृष्ट काल अपनी अपनी स्थिति प्रमाण होता है। ये तो सब नरकों में ये घटित होगा, अपनी अपनी स्थिति प्रमाण। नरक इन जनरल बात करनी है तो हम कहेंगे वो 33 सागर, और एक नरक में अलग अलग कहने तो अपनी अपनी स्थिति प्रमाण। इसी प्रकार सामान्य देव भवनवासी और व्यंतरों में होता है, किंतु इतनी विशेषता है कि जैसे हमने असंगी में से पहले नरक में उत्पन्न होता है देखा है, वैसे देवों में भी उत्पन्न हो सकता है। वन कौन से देवों में, भवनवासी और व्यंतर, ज्योतिषी को भी छोड़ा, यहाँ पर असंगी जीव ज्योतिषियों में उत्पन्न नहीं होते। असंगी पंचेंद्रिय मरकर भवनवासी और व्यंतर तो हो सकते हैं, ज्योतिषी में नहीं जाते। ये कौन से देव ज्यादा है, भवनवासी व्यंतर के ज्योतिषी? ज्योतिषी देव सबसे ज्यादा है। किंतु इतनी विशेषता है, अब उनके देवों के बारे में क्या विशेषता है कि अजघन्य अनुभाग विभक्ति का काल अपनी स्थिति प्रमाण होता है। वहां की जो अपनी स्थिति है उसको वहां ले लेना। ये इसी प्रकार जो कथन किया ना, वो जैसे पहले नरक में कथन किया वैसा ही इसमें भी होगा, इतनी उनमें समानता लेना। नरक की अपनी स्थिति लेने और वहां उनकी अपनी स्थिति लेना। अब दूसरी पृथ्वी से लेकर सातवीं पृथ्वी तक मुनि कर्म की जघन्य अनुभाग विभक्ति का जघन्य काल अंतर्मूर्त। अभी यहां जघन्य किसको होगी, वो तो एक तो जघन्य अनुभाग के साथ आया हुआ जीव है और उसमें वहां पर भी उपशम उपशम समय तो भी प्राप्त किया है और फिर विषय योजना भी की है, ऐसा जीव हम उसको ले सकते हैं। तो उसका जघन्य काल कितना है? अंतर्मूर्त
आयु के अंत में और अंतर्मूर्त काल तक रहा और पीछे स्मरण हो गया।
नहीं नहीं नहीं, विषय योजना की बात क्यों उठा रहे अकेले?
जघन्य अनुभाग दिखता है ना,
जघन्य का हाँ, अनुभाग विभक्ति का जघन्य काल देखो, ये निकालना, स्वामित्व निकालो, जगन्य का स्वामित्व। अभी हम 16 पृष्ठ पर देखे थे ना हमने, ना आपने बात, उत्कृष्ट परिणामों से अनंतानुबंधी चतुष्क की विषय योजना कर चुका है। द्वितीयादि नरकों में संगी के योग्य अनुभागी, इसलिए वहां जघन्य अनुभाग का स्वामित्व मिला। विशेषार्थ में हम नीचे देख रहे हैं, जिसने उत्कृष्ट परिणामों से अनंतानुबंधी चतुष्क की विषय योजना की है, ऐसे जीव को है। तो विषय योजना की है और नहीं, आयु के अंत में क्यों ले रहे हो उसका?
अंतर्मूर्त लेना है नहीं,
कहीं भी लेना है। विषय योजना कर चुका हो,
अच्छा वापस
जघन्य हुआ, फिर संयोजना कर दी और फिर उत्कृष्ट बंद किया, तो अंतर्मूर्त होगा उसका। ख्याल में आई बात? फिर से ना, अभी दूसरे नरक से हम नीचे के नरकों की बात करें। पहले नरक में तो असंगी में से आया हुआ जीव लिया, जघन्य वाला। दूसरे से सातवें नरक तक के जीवों को जघन्य किसके होगा? तो उसने उत्कृष्ट परिणाम के द्वारा अनंतानुबंधी की विषय योजना की, यानी अनुभाग बड़ा घात किया उसने। तो घात करने के बाद उसका मिनिमम पॉसिबल अनुभाग हुआ है, वो जघन्य कितने काल तक रहेगा? वो ऐसा जीव फिर दोबारा मिथ्यात्व में चला जाएगा और अधिक अनुभाग बांधेगा, तो उसका जघन्य का काल समाप्त हुआ। तो इसलिए वो विषय योजना वाला लिया, परंतु विषय योजना में ही रहना मत उसको, नहीं तो उसको जघन्य में रहने का उत्कृष्ट काल घटित होगा। हमें जघन्य काल चाहिए। देखो यहाँ क्या कहते हैं, दूसरी पृथ्वी से लेकर सातवीं पृथ्वी तक मोनी कर्म की जघन्य अनुभाग विभक्ति का जघन्य काल अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट काल कुछ कम अपनी स्थिति प्रमाण है। अब ये कुछ कम क्यों कहा? वहां जीव उत्पन्न हुआ, सम्यक तो प्राप्त, यानी सम्यक तो प्राप्त किया और विसंयोजना की, विसंयोजना की तो उसका जघन्य हुआ, तभी वो विसंयोजना के साथ ही रहा लगातार। सातवें नरक में तो केवल लास्ट में फिर वो मिथ्यात्व में चला जाएगा, परंतु यहाँ कुछ कम अपनी स्थिति कहा। तथा जघन्य अनुभाग स्थिति का विभक्ति का जघन्य काल अंतर्मूर्त। अब ये जो जघन्य किया ना उसने,
विसंयोजना की मिथ्यात्व में गया वापस
ऐसा, हाँ अभी विषय योजना वाला लिया जिसका जघन्य था, फिर वो मिथ्यात्व में गया, उसका अजघन्य हुआ, तो अजघन्य हुआ तो अंतर्मूर्त में फिर उसने विषय योजना की, तो उसका फिर जघन्य हुआ, तो अजघन्य का काल अंतर्मूर्त हुआ। या ऐसा भी ले सकते हैं ना कि विषय योजना की है, फिर संयोजना की, अंतर्मूर्त में मर गया, ऐसा भी ले सकते। देखो अजघन्य अनुभाग विभक्ति का जघन्य काल अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट काल अपनी संपूर्ण स्थिति प्रमाण है, क्योंकि उसने जघन्य किया ही नहीं ना, और जघन्य उसके हुआ ही नहीं पूरी लाइफ टाइम में, अजघन्य ही रहा, तो अपनी स्थितियां ने उसका वहां का रहने का उत्कृष्ट आयु उतने काल तक उसके अजघन्य ही रही। इसी प्रकार ज्योतिषी देवों में कहना चाहिए, जैसे दूसरे नरक से लेकर सातवें नरक में देखा है, क्यों वहां असंगी उत्पन्न नहीं होते हैं, इसलिए यहाँ ज्योतिषियों में भी ऐसा ही जानना। इतनी विशेषता है, उत्कृष्ट काल अपनी स्थिति प्रमाण कहना चाहिए। नरक में तो सातों ही नरकों तक लिया और देवों में केवल ज्योतिषियों में ही घटित किया, क्या ऊपर भी ऐसा हो सकता है ना? सौधर्मों को क्यों नहीं लिया?
वहाँ पे शाही समुद्र
बोलो सौधर्म को क्यों नहीं लिया? ज्योतिषियों के लिए जगन्य अलग होगा और वहां तो असंगी उत्पन्न नहीं होते, तो ज्योतिषी के लिए जगन्य कौन सा है? जिसने विषय योजना कर दी, वहां जाके सम्यक तो प्राप्त किया और विषय योजना की, उसके जगन्य हुआ। तो सौधर्म में भी ऐसा हो सकता था ना?
नहीं, सौधर्म में
बोलो, सौधर्मादि जो देव है उनमें भी ऐसा हो सकता था, तो उनको ऐसा क्यों नहीं लिया? ज्योतिषियों में यहाँ लिया क्यों? उसमें असंगी तो होते नहीं है, तो ऐसे सौधर्म में भी घटित करना चाहिए था ना? बोलो, अभी बोलो।
सौधर्म में शाही सम्यक दृष्टि भी होती
है। हाँ, जिसने दो बार उपशम श्रेणी चढ़कर उतरा है और फिर क्षपक श्रेणी शाही सम्यक तो प्राप्त किया है, तो उपशम श्रेणी चढ़ के एक बार चढ़ के उतरा तो अनुभव घटा, दूसरी बार चढ़ के घटा तो और अनुभव घटा, और फिर क्षायिक सम्यक दृष्टि हुआ तो अनुभव और घट गया। ऐसा जीव सौधर्म से लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक कहीं भी उत्पन्न होगा तो उसके जघन्य अनुभाग पाया जाएगा। वह ऐसा जीव ज्योतिषियों में नहीं उत्पन्न हो सकता, इसलिए अकेले ज्योतिषियों को अलग निकाला यहाँ पर। इतनी विशेषता की उत्कृष्ट काल अपनी स्थिति प्रमाण, ज्योतिषियों की अपनी स्थिति। अब विशेषार्थ देखते हैं। जो हत समुत्पत्ति सत्कर्म वाला असंगी पंचेंद्रिय तिर्यंश मरकर नरक में जन्म लेता है, उसके तब तक जघन्य अनुभाग रहता है जब तक वह सत्ता में स्थित अनुभाग से अधिक अनुभाग बंधन नहीं करता। अनुभाग की बात चल रही, निषेक तो बढ़कर बांधेगा। अतः यदि वह दूसरे समय में ही अनुभाग को बढ़ा लेता है तो उसके जघन्य अनुभाग का काल एक समय होता है, अन्यथा अंतर्मूर्त होता है, यानी अंतर्मूर्त में तो बढ़ेगा ही। अंतर्मूर्त के बाद हुआ अजघन्य अनुभाग का सत्व आयु के अंत समय तक रहता है। जो जघन्य नहीं है वो अजघन्य है, वो पूरी आयु तक अजघन्य ही रहेगा। अतः अजघन्य अनुभाग का जघन्य काल अंतर्मूर्त कम 10,000 वर्ष होता है। पहला अंतर्मूर्त जघन्य वाला उसमें से घटा दिया, और यदि अजघन्य अनुभाग के साथ नरक में जन्म लिया गया तो उसका उत्कृष्ट काल 33 सागर होता है, क्योंकि नरक में इतनी ही उत्कृष्ट स्थिति है। सभी नरकों की एक साथ बात की थी पहले, अभी यही बात कहाँ कहाँ घटित होती है। पहला नरक सामान्य देव, जैसे सामान्य से नरक में घटाया वैसे सामान्य से देवों में बताएंगे। भवनवासी और व्यंतरों में इसी प्रकार जानना चाहिए, पर सामान्य नरकियों में 33 सागर घटित किया वैसे सामान्य देवों में कितना घटित करना?
अजघन्य में देने का कारण?
हाँ, जो जघन्य नहीं वो अजघन्य,
वो तो 33 सागर हो जाएगा ना अजघन्य में देने का।
हाँ, हो सकता है।
हाँ,
हो सकता है 33 सागर, इसी प्रकार जानना चाहिए, क्योंकि हत समुत्पत्तिक सत्कर्म वाला असंगी उनमें जन्म ले सकता है। असंगी ऊपर के देवों में नहीं जाता है, परंतु उनके अजघन्य तो हो सकता है ना। जो उनका जघन्य नहीं वो अजघन्य ही कहलाएगा, इसलिए अजघन्य में तो सब लेने जीव देव सभी लेने। अंतर केवल इतना है, इनमें अजघन्य अनुभाग का उत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण लेना चाहिए, यानी जिस स्वर्ग की जो उत्कृष्ट स्थिति है उसको वहां लेना। जैसे पहले नरक में एक सागर, दूसरे आदि नरकों में तथा ज्योतिषी देवों में असंगी तो जन्म ले नहीं सकता। अतः अजघन्य अनुभाग वाला जो जीव उक्त स्थानों में जन्म लेकर अंतर्मूर्त के बाद सम्यक्त्व को ग्रहण करके, ये दूसरे नरक से नीचे के लिए है ना, इसलिए वो सम्यक्त्व को ग्रहण करके अनंतानुबंधी की विषय योजना करता है, उसके जघन्य अनुभाग होता है। यदि वह जीव विषय योजना करके अंतर्मूर्त के बाद सम्यक तो उससे च्युत हो जाता है या मर जाता है, दोनों लिए। तो उसके जघन्य अनुभाग का काल अंतर्मूर्त होता है, ये बात ख्याल में आई। जघन्य कब किया? विसंयोजना करने पर। तो विसंयोजना के साथ रहा और मर गया तो नारकी नहीं रहा ना, तो नारकी का जघन्य अंतर्मूर्त तक रहा। दूसरी बात, सम्यक तो से च्युत हुआ, मिथ्यात्व में आने पर फिर नया बंध किया, अनुभाग ज्यादा बढ़ाया, तो उसका जघन्य का काल अंतर्मूर्त रह गया। दोनों ही पद्धति से हो सकता है, अन्यथा यानी वो जघन्य काल अंतर्मूर्त, अन्यथा कुछ कम अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण होता है, किंतु सातवें नरक में सम्यक दृष्टि अवस्था में मरण नहीं होता, अतः कुछ और अधिक कम कर लेना चाहिए, यानी उसकी में एक्स्ट्रा माइनस करना वो अंतर का अंतर्मूर्त। और जघन्य अनुभाग का जघन्य और उत्कृष्ट काल स्पष्ट ही है। यही रुकते हम। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हो। विनोद भाई।